आज जो विषय है वो है ज्योग्राफी और हम बात करेंगे भूगर्भ और उसके पदार्थ। जी हाँ, और जानकारी देने के लिए मौजूद एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है श्री विवेक सिंह जी, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एकेडमिक डिपार्टमेंट NIU से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
धन्यवाद मैम।
तो सर जैसा कि हमारा टॉपिक है भूगर्भ और उसके पदार्थ, मैं चाहूंगी चर्चा को शुरू कीजिए प्लीज।
धन्यवाद। शिक्षार्थियों और श्रोताओं, आज उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भूगोल विषय के अंतर्गत हम बात करेंगे भूगर्भ और उसके पदार्थों की। शिक्षार्थियों, आप यह तो जानते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, या हम कहें ज्ञात ग्रह है, जिसमें जीवन विकसित पाया गया। यहाँ के निवासी के रूप में जब से इस पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे विभिन्न रूपों में जब वो विकसित हुआ, तो हमने ये परिवर्तन देखा और आज हम जिस रूपों में हैं या जैसे हम रह रहे हैं, जिस प्रकार के हम अपने भौतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, वो इस विकास का ही परिणाम है। एक चीज और होती है शिक्षार्थियों की, हमारे सामने जो चीजें घटित होती हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं, शायद हम उनका विवरण विस्तार से जान पाते हैं, या जो चीजें हमारी आंखों के सामने हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, उसके बारे में भी हमारी उत्सुकता होती है, उसे हम जानते हैं या जानने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं, जगहें हैं, जहां के बारे में हमें नहीं मालूम या हम उसे देख नहीं सकते हैं अपनी आंखों से, बल्कि उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमें दूसरे तरीकों को अपनाना पड़ता है, या हम कहें कि हमें उपकरणों का और दूसरी तकनीकों का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी और उसके अंतर की जो है, यानी भूगर्भ है, उसके बारे में भी जानने का कोई ऐसा सीधा तरीका नहीं है। उसको जानने के लिए हमें बहुत सारे अन्वेषणों, बहुत सारी शोध का सहारा लेना पड़ा, या हम कहें बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग किया गया। ये सब चीज़ें हमें भूगर्भ से परिचित कराती हैं, और शायद जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने नहीं है, हम उसके लिए और भी ज़्यादा उत्सुक होते हैं। आपने सोचा होगा, अक्सर आपके मन में भी आता होगा कि हम पृथ्वी को तो देख पा रहे हैं, हम पहाड़ को देख पाते हैं, मैदान को देख पाते हैं, जंगलों को देख पाते हैं, नदियों को देख पाते हैं, लेकिन इस पृथ्वी के अंदर क्या है, उसके बारे में कैसे जाने। तो जो अज्ञात के प्रति उत्सुकता है, निश्चित रूप से हम सभी के मन में होती है। अब हम जैसे हमने कहा कि हम पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में, जब से हमने देखा कि अगर आप गांव में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, हमने देखा कैसे मिट्टी किस तरह की है, वहां पर चट्टानें किस तरह की है, उसके ऊपर पेड़ पौधे कैसे हो रहे हैं, ये तो आप जान गए। लेकिन वही चट्टानें या उस चट्टान के जो दूसरे रूप हैं, वो पृथ्वी के अंदर होते हैं। अगर अंदर होते हैं तो वो कैसे हैं, वो कैसे बने, और यही चट्टानें जब टूट फूट जाती हैं तो वो धीरे धीरे एक लंबे समय में मिट्टी में परिवर्तित होने लगती हैं। तो ये जो सारे परिवर्तन आते हैं, वो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें हैं, या वहां की जो विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, उनमें परिवर्तन और उनके स्वरूप में परिवर्तन की वजह से होता है। तो वो कैसा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग कैसे हैं, उनकी संरचना किस प्रकार की है, उसके बारे में हमें कैसे जानकारी प्राप्त होती है, ये सब बातें हम आज की इस चर्चा में आपसे करेंगे। शिक्षार्थियों, जैसे कहा कि हम पृथ्वी के ऊपर, जो उसकी ऊपरी सतह है, जो हमारी आंखों के सामने है, उसके बारे में तो हम एक सामान्य ज्ञान तो हमें होता ही है कि पर्वत है, पठार है, चट्टाने हैं, मिट्टी है, पर उसके बारे में और भी जानकारियां हम भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते जुटाते हैं। लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या चीज है, उसे चूंकि हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, तो जैसा मैंने कहा कि हम विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जब आप अपने गांव में भी देखा होगा कि जब कोई नया कुआं खोदा जा रहा है, तो हम उसमें अंदर, या आप कहीं पर भी देखें, अगर कोई गड्ढे की खुदाई हो रही है या कोई खाई है, तो हम उसके नीचे मिट्टियों के विभिन्न सतहों को देखते हैं। हम देखते हैं कैसे मिट्टी की सतहों के बीच में चट्टाने हैं, या चट्टानों का स्वरूप कैसे एक परत के ऊपर दूसरी परत के रूप में बदलता रहता है। तो इस तरह से इस अज्ञात के प्रति जानने की उत्सुकता अगर है, तो हम इन छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा देख सकते हैं कैसे इसमें परिवर्तन आता है। लेकिन पृथ्वी इतनी ही तो नहीं है, वो बहुत गहरी है, तो उस गहरी पृथ्वी के बारे में जानकारी हम कैसे प्राप्त करें? तो जैसा मैंने कहा कि गहरे कुओं की खुदाई के द्वारा भी इसके बारे में जानकारी मिली। जैसे कई जगह देखें तो जो खनिजों के खदन के लिए हम खाने होती हैं वहाँ पर हम जाते हैं, भूगोलविद्ता वहाँ पर जाकर खोज करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इतनी गहराई पर पृथ्वी के अंदर परिवर्तन आ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता है, जो ये खदानें होती हैं वो कई 100 मीटर गहरी होती हैं, कुछ तो मान लीजिए कुछ किलोमीटर की गहराई तक भी होती हैं, तो वहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर यही तापमान हम अंदर की ओर बढ़ते गए तो बहुत ज़्यादा हुआ, तब क्या होगा? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मन में भूगर्भ को जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। और धीरे धीरे, जैसा कि मैंने कहा कि हम प्राचीन काल में हो सकता है कि हम पृथ्वी के अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन अभी आप देखें कि कैसे नवीन तकनीकें, नवीन उपकरणों का आविष्कार हुआ जिसके द्वारा हम बहुत गहराई तक जा सकते हैं, वहाँ की चट्टानों की, वहाँ के तापमान की, वहाँ पर होने वाले दबाव की, इन सब की जानकारी हम इन उपकरणों के माध्यम से हम कर सकते हैं। और फिर इसी के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वहाँ पर पाए जाने वाली सामग्रियों, तापमान, दाब आदि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानना एक बहुत ही अगर हम कहें तो तकनीक के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान जैसा है। तो ये कैसा है, इस अन्वेषण, इन शोधों के द्वारा हमें पृथ्वी की संरचना या भूगर्भ की संरचना के बारे में क्या जानकारी प्राप्त हुई, तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। शिक्षार्थियों, अगर आप देखें कि भूगर्भ की संरचना, आप एक पृथ्वी का एक वो सतह है जिसे आप देख रहे हैं, जो आपकी आपकी आंखों के सामने है, लेकिन जो उसका आंतरिक भाग है अगर हम उसको कहें तो मुख्यतः तीन भागों में बटा हुआ है। अगर सबसे ऊपरी परत को देखें, जो शायद हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है क्योंकि हमारी सारी आर्थिक सामाजिक क्रियाएं इस ऊपरी परत पर निर्भर होती है, लेकिन ऊपरी परत को जानने से पहले हम सबसे पहले चलते हैं पृथ्वी के केंद्र पर। जैसे शिक्षार्थियों मैंने कहा कि हम जब अंदर गहराई की ओर जाते हैं तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, और अगर इतना ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है तो जब हम इसके केंद्र में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है, हो सकता है वो जो केंद्र है वो एक तरल के रूप में हो, पर ऐसा नहीं है, वो क्यों है इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन जो क्रोड है, पृथ्वी का जो क्रोड है वो अत्यधिक घनत्व वाली परत है, शायद जो पृथ्वी की तीन परतें हैं उनमें से सबसे ज़्यादा घनत्व तो इसी का है, जो कि 11.0 से भी अधिक है। अब इस क्रोड की जो संरचना है वो मुख्यतः दो प्रकार की धातुओं से हुई है, पहला है लोहा, और इस तरह की और पदार्थों से। अगर हम कहें कि क्रोड के बारे में अगर सबसे बड़ी जो जानकारी है वो उसके तापमान के बारे में ही है, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा घनत्व तो वाला है और इसमें तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे इसकी संरचना है वो दो चीज़ों से हुई है, निकिल और फेरस, फेरस यानी लोहा। तो इसका एक नाम निफे भी है, यानी निकिल से नी और फेरस से फे, तो हम इसको संक्षेप में हम निफे भी कहते हैं। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो इससे आपको आसानी होगी। इस क्रोड को यानी निफे को भी दो भागों में बांटा गया है। अगर आप अपनी आपने अपनी अध्ययन सामग्री को पढ़ा हो तो वहाँ पर अगर आप जो इसका चित्र देखा वहाँ पर इसको C1 और C2 से दर्शाया गया है। पहली जो C2 परत है वो अर्ध तरल है, C1 परत जो है वो अर्ध तरल है, यानी इसमें केंद्रक की तुलना में इसका जो बाहरी भाग है वो अपेक्षाकृत कम गर्म और तरल अवस्था में है, यानी अर्ध तरल है, जबकि इसका जो केंद्र है वो एकदम ठोस है, और इसे हम C1 जैसे मान जो चित्र है उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, पृथ्वी के जो केंद्र है जिसको हम निफे कहते हैं, इसके दो भाग हैं और यह जो केंद्र है वो गर्म और ठोस, जबकि उसका ऊपरी जो हिस्सा है वो अर्धतरल अवस्था में है। दूसरी बात आती है जो कि इस निफे को घेरे हुए है, उसे हम मैंटल कहते हैं। जिस तरह से हमने निफे को दो दो तरह की खनिजों की वजह से हमने उसको निफे कहा, यानी निकल और फेरस, वैसे ही सिलिका और मैग्नीशियम की उपलब्ध होने की वजह से ही मैंटल को सीमा कहा जाता है। इसका जो घनत्व है वो निफे की तुलना में कम होता है, जो कि 3.1 से 5.1 तक का है। सीमा के बाद जो सबसे ऊपरी परत है उसे हम भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी तो सबसे ऊपरी आवरण है, लेकिन सीमा के बाद हम देखते हैं कि जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं, और इसका जो घनत्व है 2.75 से 2.90 तक है। तो इस तरह से इस स्थल मंडल में भी सिलिका और एल्युमिनियम की ही प्रमुखता पाई जाती है, और सिलिका और एल्युमिनियम की प्रमुखता की वजह से इसे सियाल कहा जाता है। तो इस तरह से ये हमारा तीसरी परत स्थलमंडल हुई, और स्थलमंडल की जो सबसे बाहरी आवरण है वो भूपर्पटीय कहलाता है, और संपूर्ण मानव जगत अपनी आर्थिक और सामाजिक क्रियाएं इस भूपर्पटीय पर ही करता है। तो शिक्षार्थियों, इस तरह से हम अगर देखें तो हमारे भूगर्भ की संरचना इन तीन प्रमुख परतों से हुई है। अब अगर हम पृथ्वी के भूगर्भ की बात करें तो हम तीन तथ्यों पर हमारा जो ध्यान है वो सबसे ज्यादा होता है। पहला तो है तापमान, दूसरा है दबाव और तीसरा है घनत्व। तापमान के बारे में शिक्षार्थियों, सामान्य रूप से कहा जाता है कि जैसे जैसे हम भूपर्पटी से पृथ्वी के क्रोड की ओर जाते हैं तो तापमान बढ़ने लगता है। प्रारंभ में अगर आप देखें तो लगभग प्रति 32 मीटर के गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो अगर इस आधार पर देखें तो लगभग 10 किलोमीटर पर 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, 40 किलोमीटर पर इसे 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और इतने ज्यादा तापमान पर तो चट्टानें निश्चित रूप से तरल अवस्था में होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इतनी गहराई पर चट्टानें तरल अवस्था में नहीं है, और ना ही तापमान इतना ज्यादा है, क्योंकि अगर आप देखें तो बेसाल्ट लावा शैल को धरातल पर 1250 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो पिघल जाती है, लेकिन और वही शैल अगर आप भूगर्भ में देखें तो 32 किलोमीटर की गहराई पर वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलेगी। लेकिन इन स्थितियों के बावजूद ना तो इतनी गहराई पर ये चट्टानें पिघल रही हैं और ना ही उनका तापमान है। तो शिक्षार्थियों, इसमें एक चीज ये है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई पर जाते हैं तो तापमान के बढ़ने की जो दर है वो अपेक्षाकृत कम होती जाती है, यानी पृथ्वी के ऊपरी परतों में जहां तापमान तेजी से बढ़ता है, वहीं हम जैसे जैसे नीचे गहराई पर जाते हैं तो तापमान वृद्धि की यह दर कम होती जाती है। तो अगर देखें कि भूगर्भ के ऊपरी 100 किलोमीटर जहां बढ़ने की दर 12 सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर होती है, वहीं 300 किलोमीटर में यह वृद्धि दर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इसके बाद यानी 300 किलोमीटर के बाद जो यह है ये पुनः घटकर 10 सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर हो जाती है। तो इस तरह से गहराई के साथ तापमान बढ़ने की दर कम होती जा रही है। ऐसा होता क्यों है? अगर भूपर्पटी से जब हम अंदर की ओर जाते हैं तो तापमान तेजी से बढ़ रहा है और धीरे धीरे ये वृद्धि की दर कम होती जाती, तो क्यों? इसके लिए कहीं ना कहीं दबाव जिम्मेदार है। जैसे हमने कहा कि भूगर्भ की हम तापमान, दबाव और घनत्व की बात करेंगे, तो शिक्षार्थियों, आपको मालूम है कि पृथ्वी पर अगर हम कहें कि भूपर्पटी के ऊपर जो वायुमंडल है वहां पर वायु दाब होता है, फिर पृथ्वी में जो इतनी इसका ठोस रूप है, यह ठोस रूप अंदर की पदार्थों पर दबाव डालता है, और यह दबाव जैसे जैसे हम केंद्र की ओर जाते हैं वैसे वैसे यह दबाव बढ़ता जाता है। अब यही देखें कि पृथ्वी के केंद्र पर जो दबाव है वो समुद्र तल पर वायुमंडल के दाब से लगभग 30 से 40 लाख गुना ज्यादा है। तो इतने ज्यादा दबाव के साथ तापमान की जो वृद्धि है वो होने के बावजूद जो चट्टानें हैं वो द्रव रूप में नहीं होती, यानी एक तरफ दबाव की वजह से जहां चट्टानों का तापमान की जो वृद्धि की दर है वह उतनी ज्यादा नहीं है, वहीं दबाव की वजह से उस तापमान पर भी जो चट्टानें हैं वो तरल अवस्था में ना होकर ठोस अवस्था में होती। इस तरह से तापमान, दबाव और भूगर्भ की जो संरचना है वो आपस में घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। हमने तीसरी बात की घनत्व की। तो जैसे जैसे दबाव ज्यादा होता है, हम घनत्व की ओर जब हम बढ़ते हैं पृथ्वी के केंद्र की ओर, तो दबाव बढ़ने से घनत्व भी बढ़ता जाता है। यही कारण है कि जहाँ ऊपरी हिस्से में 2.0 और इसके आसपास दबाव पाया जाता है, वहीं इसका जो क्रोड का घनत्व है वो 11.0 है। तो इस तरह से तापमान, दबाव और घनत्व के कारण पृथ्वी का जो भूगर्भ है उसकी संरचना प्रभावित होती है। अब शिक्षार्थियों, जैसे हमने कहा कि मनुष्य के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो भूपर्पटी है। कारण यह है कि हमारी समस्त आर्थिक सामाजिक क्रियाएं इसी पर संभव है। हम खेती यहाँ करते हैं, हम उद्योग धंधे यहाँ लगाते हैं, हमें पेयजल की यहाँ से प्राप्ति होती है, हम भोजन के लिए हमें अन्न की प्राप्ति होती है, हम संचार के साधनों या परिवहन के साधनों का निर्माण इसी भूपर्पटी पर करते हैं। उसके अलावा जल की प्राप्ति, चाहे वो भूमिगत जल हो, चाहे वो महत्वपूर्ण खनिज अयस्क हो, वो सभी हमें इस भूपर्पटी से ही प्राप्त होते हैं। अब इस भूपर्पटी की जब हम संरचना की बात करते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार की चट्टानें होती हैं, विभिन्न शैलें हैं जो अलग अलग रूपों में होती हैं। अब अगर हम पृथ्वी की इस भूपर्पटी पे पाए जाने वाले खनिजों की बात करें तो ये लगभग 2000 से भी ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। हालांकि सामान्य रूप से जो प्रमुख खनिज हैं वो 6 हैं जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और मानव के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हैं। ये हैं फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरेक्सीन, एम्फीबोल, अब्रक और ओलिबीन। ये तो बात हुई खनिजों की, लेकिन अब चट्टानें कौन सी हैं? चट्टानों की अगर आप बात करें तो आपने कुछ चट्टानों के बारे में सुना होगा, क्योंकि मैं जब भी आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से बात करता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भूगोल का जो एक का जो अध्ययन है वो आप पर्यवेक्षण आधारित है। आप खुद चीज़ों को देखें, समझें और उनको विश्लेषित करें। तो जब भी आप अपने आसपास देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो ग्रेनाइट हो, बेसाल्ट हो या दूसरी प्रकार की अवसादी और कायांतरित चट्टानें। इन चट्टानों में ही विभिन्न प्रकार के खनिज अयस्क पाए जाते हैं। तो इन खनिज अयस्कों के आधार पर कई बार उसे हम कुछ खनिजों को हम धात्विक खनिज मान लेते हैं, कुछ अधात्विक खनिज होते हैं। धात्विक खनिजों में भी कुछ लौह अयस्क होते हैं, यानी लौह आधारित होते हैं, कुछ अन्य अगर हम कहें कुछ दूसरे प्रकार, तो इस तरह से इनमें भी भिन्नता हमें देखने को मिलती है। ये तो हुई शैलों की बात। इसके बाद इनके हम प्रकारों की बात करेंगे। जी
शिक्षार्थियों, श्रोताओं, यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटते हैं, आप बने रहिए और सुनते रहिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी FM 91.2 MHz। शिक्षा तो श्रोताओं सभी का एक बार पुनः स्वागत है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी FM 91.2 MHz पर। जैसा कि हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी में, हमारा टॉपिक है भूगर्भ और उसके पदार्थ, और हमें जानकारी देने के लिए मौजूदा एक्सपर्ट हमारे साथ हैं श्री विवेक सिंह जी, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एकेडमिक डिपार्टमेंट NIOS। सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद मैम।
तो सर, मैं चाहूंगी चर्चा को शुरू कीजिए।
जी धन्यवाद। शिक्षार्थियों, ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे शैलों की, और अब आइए जाने शैलों के प्रकारों की। अगर हम देखें तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर शैलों को मुख्यतः तीन वर्गों में बांटा गया है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या इसे कायांतरित शैल भी कहते हैं। सबसे पहले जो प्रमुख शैल है, जो एक तरह से सभी शैलों का आधार है, वो आग्नेय शैलें हैं। आग्नेय शैल का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो वो चट्टाने हैं जिनकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है, अग्नि अर्थात लावा या मैग्मा। तो पृथ्वी के अंदर जो तरल पदार्थ रहता है, तरल चट्टानी पदार्थ रहता है, वो मैग्मा होता है, और इसके ठंडा होने कर होकर जमने से ही इन चट्टानों का निर्माण होता है। अब चूंकि भूगर्भ में जो चट्टानें पिघली हैं वो अलग अलग तापमान और दबाव के साथ होती हैं, उनके ठंडा होने की दर अलग अलग होती है, और इन स्थितियों की वजह से उसी एक तरल मैग्मा से ही अलग अलग प्रकार की चट्टानों का भी निर्माण होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब भूपरपटी में दरारें होती हैं या जो परतें हैं, अगर जिसको हम टेक्टोनिक्स प्लेट्स कहेंगे, तो उनमें भी कई बार जब टूट फूट होती है और उसके द्वारा दरारों का निर्माण होता है, तो इन दरारों के माध्यम से ही कई बार मैग्मा या छिद्रों के द्वारा ये मैग्मा बाहर आता है। जब यही मैग्मा बाहर आ जाता है तो वो लावा कहलाता है, और भूपरपटी के नीचे और सतह पर आकर इन दोनों ही जगहों पर इसके द्वारा चट्टानों का निर्माण या शैलों का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से ये शैलें बनती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चूंकि दबाव ऊपर से बहुत ज्यादा है तो ये मैग्मा ऊपर नहीं जा पाता, बल्कि वो संपीड़ित होकर पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर जम जाता है और चट्टानों का रूप ले लेता है। तो इस तरह से तरल मैग्मा भूपरपट्टी के अंदर और बाहर आने वाला जो तरल पदार्थ यानी लावा, वो ठंडा होकर धरातल के अंदर और धरातल के बाहर दो प्रकार की चट्टानों का निर्माण करता है। चूंकि जैसा मैंने कहा कि सभी शैलें मुख्य रूप से आग्नेय शैलों से ही परिवर्तित होकर बनी है, तो इसलिए इसको जनक शैल भी कहा जाता है। भूगर्भ के सबसे ऊपरी 16 किलोमीटर में लगभग सब आग्नेय शैलों का जो 95% है वो पाया जाता है। इसके अलावा इससे ज्यादा गहराई पर भी जो छोटा सा हिस्सा है वो मिलता है। तो इस तरह से आग्नेय शैलें जनक शैलें हैं और इनसे ही दूसरी शैलों का निर्माण होता है। और जैसा मैंने कहा कि पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर ये दो प्रकार की आग्नेय शैलें होती हैं, तो यही दो प्रकार आग्नेय शैलों के हैं जिनको दो वर्ग प्रमुख बांटा जाता है। ये वर्ग है, पहला है बाह्य आग्नेय शैलें और दूसरा है आंतरिक या अंतर्भेदी आग्नेय शैलें। बाह्य आग्नेय शैलें जो हैं वो वास्तव में लावा के सतह पर आने और उसके ठंडा होकर जमने से बनी है। चूंकि इन शैलों में जो इनका जब निर्माण होता है तो ये लावा के बहुत तेजी से ठंडा होने की वजह से होता है, तो इनमें जो रवे होते हैं या जो दाने होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। इन्हें हम ज्वालामुखी शैल भी कहते हैं, गैब्रो, बेसाल्ट, ये प्रमुख शैलें हैं। और इन शैलों से ही जो मिट्टी का निर्माण होता है वो काली मिट्टी होती है, और भारत में अगर आप देखें तो दक्कन के पठार में इस प्रकार की मिट्टी बहुतायत से पाई जाती है। दूसरा जो शैलों का प्रकार है, आग्नेय शैलों का प्रकार है, वो है आंतरिक आग्नेय शैलों का। क्योंकि धरातल पर आने के बाद ये लावा जब तेजी से ठंडा होता है, क्योंकि वहां पर तापमान तेजी से कम हो जाता है, लेकिन जब हम भूगर्भ में होते हैं तो यही चट्टाने धीरे धीरे ठंडी होती हैं, और यही जो मैग्मा है जो धीरे धीरे ठंडा होकर इन चट्टानों का रूप लेता है। चूंकि ये धीरे धीरे ठंडी होती हैं तो इन शैलों में जो रवों का आकार है वो अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इन्हें हम कई बार पाताली आग्नेय शैल भी कहते हैं। इनमें ग्रेनाइट, डोलराइट जैसी प्रमुख चट्टाने हैं, और दक्कन के पठार और हिमालय क्षेत्र में अगर आप देखें तो आग्नेय शैलों के बहुत ज्यादा उदाहरण मिलते हैं, जो कि इस पूरे पठार, इस विशेषकर दक्कन के पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन या धरातल के नीचे ज्वालामुखी की उपस्थिति की वजह से हुआ था। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से यही आग्नेय शैलें पाई जाती हैं, और जैसा मैंने कहा कि इस पूरे क्षेत्र में ज्वालामुखी शैलों या आग्नेय शैलों से निर्मित मिट्टियों का ही प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम बात कर रहे थे कि आग्नेय शैलों के यही दो प्रकार हैं, और अलग-अलग तरीके से ठंडा होने की वजह से इनमें रवे, इनके रंग और इनकी संरचना में भी भिन्नता पाई जाती है। तो शिक्षार्थियों, अगर आप ये देखें कि अगर कोई भी जो ज्वालामुखी है, क्योंकि ज्वालामुखी की बात मैं इसलिए करूंगा कि जब मैग्मा ज्वालामुखी उद्भेदन के द्वारा ही बाहर आता है, या अगर वो बाहर नहीं भी आता तब भी वो सतह के नीचे दबाव की वजह से वहीं पर ठंडा हो जाता है। तो इस वजह से कई प्रकार की संरचनाएं आग्नेय शैलों से जुड़ी होती हैं, चाहे वो डाइक हो, बैथोलिथ हो, या सिल हो, या बहुत अलग अलग प्रकार की संरचनाएं हैं जो कि ज्वालामुखी के साथ जुड़ी हुई है। ज्वालामुखी के बारे में विस्तार से हम अगले पाठों में बात करेंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैसे ये जो मैग्मा है या जो लावा है वो ठंडा होकर किस प्रकार शैलों का निर्माण करता है। अब ये जो शैलें हैं, आप इनकी एक और विशेषता पाएंगे कि ये एक छोटे से क्षेत्र में विस्तृत नहीं होती, एक बड़े ही वृहद क्षेत्र में इस प्रकार की शैलों की संरचना आप पाएंगे, इनका इनका इनकी स्थिति आप पाएंगे। विश्व के जो प्रमुख पर्वत समूह है, चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो अप्लेशियन हो, आल्प्स हो, रॉकीज, एंडीज, जो भी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं आप पाएंगे, उनका अगर मूल है वो आग्नेय शैल ही होती है। हालांकि चूंकि हम आगे जो शैलों के दूसरे प्रकार हैं उनके बारे में जब बात करेंगे तो देखेंगे कैसे यही आग्नेय शैलें समय के साथ साथ दूसरे शैलों में भी परिवर्तित हुई, लेकिन इन विशाल संरचनाओं का जो आधार है वो आग्नेय शैलें ही होती हैं। इन आग्नेय शैलों में, ये तो हम इनकी भौतिक संरचना की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम रासायनिक संरचना की बात करें तो इनमें सिलिका की मात्रा लगभग 65% होती है, और इस वजह से इनका रंग हल्का होता है या कठोर और मजबूत होती हैं, और ये अलग अलग रंगों में पाई जा सकती हैं। कई बार आप देखें कि इनका रंग गहरा काला हो जाता है, कुछ में इनका गहरा हरा रंग भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से सिलिका की मात्रा में भिन्नता, इनमें क्षारीयता की मात्रा में भिन्नता और ठंडा होने की अलग अलग दरों की वजह से इन शैलों में अलग अलग रंग, अलग संरचना, कठोरता और रवे पाए जाते हैं। जो प्रमुख अगर आग्नेय शैल देखें तो वो गैब्रो, बेसाल्ट, डोलोराइट है, ये क्षारी शैलों के उदाहरण माने जाते हैं। तो इस तरह से ये पहली शैल थी या शैल का रूप था, वो था आग्नेय का। अब दूसरी प्रमुख चट्टान है वो है अवसादी शैलें। जैसा कि नाम से आप सोच सकते हैं कि इनका निर्माण अवसादों के जमाव और उसके ठोस होने की वजह से होता है। शिक्षार्थियों, जैसे हम बात कर रहे थे कि चूंकि आग्नेय शैलें जनक शैलें हैं, तो अवसाद किसका होगा? जब आग्नेय शैलें या हो सकता है दूसरे प्रकार की जो कायंत्री चट्टाने हैं, वो उनमें अपक्षय होता है, वो धीरे धीरे छोटे छोटे कणों में टूटती हैं, और सैकड़ों, लाखों, हजारों सालों में जब उनका अवसाद निक्षेपित होता है, तो वही संपीड़न की वजह से शैलों में बदल जाती है। यानी किसी न किसी रूप में इनका आधार आग्नेय शैलें होती हैं, और बाद में अवसाद इकट्ठा होने की वजह से इनका निर्माण होता है। अगर आप देखें तो अवसादी शैलों की एक और विशेषता है कि ये कई बार परतदार होती है, क्योंकि अवसादन जो होता है वो एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं संभव है कि एक बार में ही सारा अवसाद निक्षेपित हो, जम जाए और वो शैलों में बदल जाए। ये एक प्रक्रिया है जो समय के एक लंबे कालखंड में होती है, और धीरे धीरे इनका ये निक्षेपण होता है। चूंकि इनकी चट्टानें भी इस बात पर निर्भर, इनकी इन चट्टानों की जो मोटाई है वो भी इस बात पर निर्भर होती है कि जो ये अवसाद है वो कितने लंबे समय तक हुआ है। तो इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में हम देखते हैं कि कैसे अवसादी शैलों का निर्माण हुआ। इसकी एक और विशेषता है शिक्षार्थियों की, मुख्यतः जो जीवाश्म पाए गए हैं वो अवसादी शैलों के मध्य ही पाए गए हैं। कारण ये होता है कि जो प्रागैतिहासिक जीव थे उनके जो अवशेष थे वो उन क्षेत्रों में पड़े रहे, धीरे धीरे वहाँ अवसादों का निक्षेपण हुआ। इन हजारों लाखों सालों के कालखंड में दबाव की वजह से वही अवसाद कठोर होकर अवसादी शैलों में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से अवसादी शैलों में मुख्यतः दो प्रक्रियाएं जुड़ी होती हैं उनके निर्माण में, अवसादन या निक्षेपण और उसके बाद दबाव और ताप की वजह से उनका कठोर होना। चूंकि अवसाद के कारक अलग अलग हो सकते हैं, अवसादन के कारक जैसे अगर आप देखें तो वो बहता जल हो सकता है, समुद्री लहरें हैं, हिमानी हैं, पवने हैं, ये चट्टानों के टुकड़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, उनको निक्षेपित करती हैं और अवसादों का निर्माण करती हैं। तो विभिन्न प्रकार के कारकों जिनको हम एजेंट बोलते हैं उनके कारण इन अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अगर आप देखें तो कई बार आप अपने अगर आसपास देखा हो कोई पहाड़ तो उसमें देखेंगे कि कैसे कुछ चट्टानें लहरदार होती हैं, यानी उनमें लहरों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वहां पर कभी न कभी जल किसी भी रूप में उपलब्ध था, वहां अवसाद जमा हुए और बाद में वो चट्टान बन गए। इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है इनका परतदार होना। अगर हम प्रमुख अवसादी शैलों की बात करें तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये प्रमुख अवसादी चट्टानें हैं। और कई बार ऐसा होता है कि रासायनिक प्रक्रिया की वजह से भी अवसादों का निर्माण होता है, तो इसमें रासायनिक तत्वों की भिन्नता भी इन पर प्रभाव डालती है। इसके साथ शिक्षार्थियों में हम शुरू में हमने बात की कि अग्नेय चट्टानों की जब बात की तो हमने ये कहा कि कैसे जो प्रमुख पर्वत है उनका आधार कहीं ना कहीं अग्नेय शैलें होती हैं, लेकिन वही पर्वतों का जो एक विशाल संरचना है वो अवसादी चट्टानों की वजह से भी संभव है। जैसे अगर हम हिमालय की बात करें तो ये निश्चित रूप से अवसाद के निक्षेपण, उसके कठोर होने और बाद में संपीड़न की वजह से पर्वत के निर्माण के रूप में हम इसे जानते हैं। तो हिमालय में भी आप देख सकते हैं कैसे अवसादी चट्टानें वहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानों की बात आती है रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों की। शब्द से जैसा ही स्पष्ट है कि ये वो चट्टानें हैं जिनके स्वरूप में परिवर्तन होता है, यानी या तो वो अग्नेय शैले हैं या वो अवसादी शैले हैं, और संपीड़न यानी तापमान और दबाव की वजह से ये चट्टानें या कई बार जो रासायनिक क्रियाएं हैं उस वजह से इन मूल चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन होता है और वो चट्टान एक बिल्कुल ही भिन्न रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से इनका स्वरूप परिवर्तन होता है, इनका कायांतरण होता है, तो उसे हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने कहते हैं। ये रूपांतरण जो है वो उच्च तापमान, उच्च दाव, पूर्ववर्ती शैलों के रंग, उनकी कठोरता, उनके गठन का स्वरूप और उनके खनिज संगठन, इन सब में परिवर्तन ला देता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो परिवर्तित चट्टाने हैं उनका स्वरूप अपने पूर्व चट्टान से बिल्कुल ही भिन्न होता है। तो इस तरह से शिक्षार्थियों कायांतरित चट्टाने इन पूर्व की दो चट्टानों से ही बनती हैं और कई बार कायांतरित चट्टान ही अपने स्वरूप में फिर से परिवर्तन ला देती है और वो एक नई कायांतरित चट्टान बन जाती है। और यह कायांतरण मुख्य रूप से ताप और दबाव की वजह से होता है और यह ताप और जो दबाव है वो उस शैल में उपलब्ध रासायनिक घटकों के स्वरूप में अलग अलग परिवर्तन लाता है और इस प्रकार से अलग अलग स्थितियों में विभिन्न चट्टानों का निर्माण होता है। अगर हम कुछ प्रमुख रूपांतरित शैलों की बात करें तो आप देखेंगे कैसे जो चूना पत्थर है वो एक अवसादी शैल है और वो बदल कायंतरण होकर उसका स्वरूप संगमरमर का हो जाता है। डोलोमाइट भी अवसादी शैल है और बदलकर संगमरमर बन जाती है। बलुआ पत्थर अपना रूप बदलकर क्वार्टजाइट बन जाता है। शेल भी एक अवसादी चट्टान है और वो बदलकर स्लेट बन जाती है। ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय शैल है और जब उसका रूपांतरण होता है तो वो नीस में बदल जाता है। और इस तरह से फाइलाइट जो कि खुद एक रूपांतरित शैल है वो अपना स्वरूप बदलकर वो शिष्ट के रूप में हमें हमें प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से विभिन्न चट्टानों में हमें रूपांतरण देखने को मिलता है। और एक और विशेषता है कि ये जो रूपांतरित चट्टानें हैं ये अपेक्षाकृत हम कहें अगर होती कि कमजोर होती हैं, लेकिन इनमें से कई ऐसी हैं जिनकी सुंदरता अपने पूर्व की चट्टान से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे विशेषकर आप देखें तो संगमरमर, और अगर आप कोयलों को देखें कोयला जो है वो अपने स्वरूप में परिवर्तन लाकर वो हीरा बन जाता है। तो इस तरह से हम आग्नेय और अवसादी शैलों में हम रूपांतरण हम देखते हैं। लेकिन इन शैलों का हमारे लिए महत्व क्या है? अगर हम महत्व की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें इन शैलों से मिट्टी की प्राप्ति होती है, भवन निर्माण में इनका प्रयोग होता है, खनिज के स्रोत के रूप में ये हैं, ये विभिन्न उद्योगों के लिए जैसे सीमेंट है, चूना भट्टियाँ हैं, उनके लिए कच्चे माल के रूप में हैं। इनसे मूल्यवान पत्थर भी जैसे हीरा या दूसरे जो हमें बहुमूल्य रत्न मिलते हैं, ईंधन के रूप में देखें तो इन्हीं से हमें पेट्रोल पदार्थ मिलते हैं और उर्वरकों के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से चट्टाने या शैले हमारे लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन शिक्षार्थियों, इन चट्टानों के रूप में परिवर्तन होता है, इनका स्वरूप बदलता है, ये नष्ट होती हैं और ये सारी जो परिवर्तन है वो अपक्षय के कारण होते हैं। तो अगर हम अपक्षय को कहें कि विभिन्न घटकों की वजह से, विभिन्न मौसमी घटकों की वजह से हम कई बार शैलों में टूट फूट पाते हैं, उनका स्वरूप परिवर्तित होता है, उनका स्थान भी परिवर्तित होता है और वो एक नए रूप में भी हम उनका परिवर्तन देखते हैं, तो ये सारी स्थितियां जो होती हैं वो अपक्षय की होती हैं। यानी किसी चट्टान में जब मौसम के तत्वों का प्रभाव पड़ता है वो टूटता है, चाहे वो छोटे टुकड़ों के रूप में हो, छोटे रवों के रूप में हो, या वो अपने रासायनिक संरचना में परिवर्तन करता है, तो वो अपक्षय कहलाती है। कई बार आप देखें कि कैसे चट्टाने टूट के मिट्टी बनती है, या अगर आप देखें कि कैसे चट्टानों में पौधों की वजह से उनमें दरारें आती हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो इस तरह से हम इनमें ये परिवर्तन देखते हैं। और ये भिन्न भिन्न कारकों के द्वारा अपक्षय की वजह से इसके तीन प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला है भौतिक अपक्षय, दूसरा है रासायनिक अपक्षय और तीसरा है जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय से तात्पर्य है कि जब बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के जो शैलें हैं वो छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं तो वो भौतिक अपक्षय कहलाता है। भौतिक अपक्षय मुख्यतः या तो अत्यधिक शुष्क स्थान पर होता है या अत्यधिक ठंडी जगहों पर होता है। अगर हम इसके प्रकारों की बात करें तो पहला प्रकार है पिंड विच्छेदन का, यानी जब अत्यधिक गर्मी के कारण चट्टाने फैलती हैं और फिर ठंडी की वजह से वो सिकुड़ती हैं, तो बार बार इस फैलने और सिकुड़ने की वजह से विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्रों में चट्टानों में दरारें आ जाती हैं और दरारें समय के साथ चौड़ी होकर वो चट्टान टूट जाती है। दूसरा है अपशल्कन। अपशल्कन मुख्यतः उन क्षेत्र में जो होता है जहाँ अत्यधिक तापमान है, अधिक तापमान की वजह से चट्टानों की ऊपरी परतें टूटने लगती हैं, लगभग जैसे अगर आप प्याज की छिलकों के रूप में देखें, और इस तरह से वो परत दर परत वो चट्टानें टूटने लगती हैं, तो इस तरह से ये अपशल्कन कहलाता है। तीसरा है तुषारी अपक्षय। चूँकि ये अपक्षय शीत स्थानों में होता है और पर्वतीय प्रदेशों में, जबकि चट्टानों में पहले से उपलब्ध दरारों में जल जमा होता है, फिर वो जल ठंडा होकर जम जाता है, और चूंकि जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, तो इस तरह से उन दरारों में वृद्धि होने लगती है और धीरे धीरे ये जो चट्टान है वो दरार में वृद्धि के कारण टूट जाती है। तो इस तरह से भौतिक अपक्षय है कि ये तीन रूप हैं। दूसरा है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय को हम अगर देखें तो इसमें चार प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। रासायनिक अपक्षय में उस शैल की जो रासायनिक संरचना है उसमें परिवर्तन आता है। तो रासायनिक अपक्षय मुख्यतः चार रूपों में है। पहला है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मुख्यतः उन शैलों में होता है जहां पर लौह खनिजों की प्रमुखता होती है। चूंकि ऑक्सीकरण के कारण लौह तत्वों कमजोर पड़ता है, लौह तत्व तो कमजोर पड़ते हैं और वो टूटने लगते हैं। उसके बाद है कार्बोनेटीकरण, यानी वो घुलनशील जहाँ चट्टाने होती है वहां पर पानी की वजह से होता है। तीसरा है जलयोजन, यानी जब शैलें अवशोषित कर लेती हैं जल को। और चौथा है घोलन, इसमें चट्टाने जो है वो पानी में घुल जाती हैं। इसके अलावा है जैविक अपक्षय, यानी मनुष्यों जीव जंतु या जानवरों की वजह से हम चट्टानों में टूट फूट देखते हैं। तो शिक्षार्थियों, इस पाठ के एक पहले खंड यानी शैल, उनके प्रकार और उनमें अपक्षय की हमने बात की। हमें आशा है कि ये कार्यक्रम के द्वारा जो हमने आपसे बात की वो आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी रहा होगा।